श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 30। प्रकृते वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, क्योंकि इसको अगर आप तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे समझेंगे तो आप सोचेंगे अच्छा तो यानी पाप और पुण्य जो कुछ भी कर रहा है वो शरीर कर रहा है, तो मैं तो बिल्कुल निर्लिप्त हूँ। निर्लिप्त किस अवस्था में है, कैसे हैं, उसकी चर्चा हम तरह करेंगे, और कर्ता कौन है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पिछले पहले संबंध में बलदेव विद्या भूषण जी की टीका को देखते हैं और फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी देखेंगे। बलदेव विद्या भूषण जी कहते हैं कि पिछले श्लोक में व्यक्ति ये देख पा रहा था कि भगवान इस पूरे जगत से अलग किस प्रकार से हैं और हर जगह समान रूप से व्याप्त कैसे हैं। अब इस शक्ति के द्वारा वह स्वयं को प्रकृति से भिन्न देखने की शक्ति प्राप्त करता है। जब वो देखता है कि इस प्रकार से परमात्मा सबको कंट्रोल कर रहे हैं, तो स्वयं को भी प्रकृति से अलग देख पाता है। जैसे सूर्य उदित होता है, सूर्य को देखता है व्यक्ति, तो खुद को भी देख पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पे प्रश्न उठा रहे हैं वो कि वो व्यक्ति जो जीवात्मा सच्चे रूप में देख रहा है, वो अपने आप को प्रकृति से अलग देखने का में सक्षम कैसे होता है। प्रश्न ये है कि जीवात्मा अपने आप को प्रकृति से अलग कैसे देख पाए, कैसे देखे, ये या देखने की स्थिति क्या होती, क्या योग्यता है। तो अब यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति देखता है कि जो भी भौतिक क्रियाएं हैं वो प्रकृति के द्वारा ही हो रही हैं और उसकी प्रेरणा या उसका क्रियान्वयन भगवान कर रहे हैं, जिसका जो च शब्द से इंगित होता है, प्रकृति एव च मतलब प्रकृति ही कर रही है लेकिन भगवान की अध्यक्षता में कर रही है। इसको भगवान ने गीता में अन्यत्र बोला है नवाध्याय में कि जो भी प्रकृति है वो मेरे मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये प्रकृति ही पूरी जगत की सृष्टि कर रही है, सब कुछ कर रही है भगवान की अध्यक्षता में, अन्यथा प्रकृति जड़ है और प्रकृति कुछ भी करने में अपने से इंडिपेंडेंटली सक्षम नहीं है। अब ये जो जीव है देखता है कि प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और वो ये भी देखता है कि आत्मा कोई क्रिया नहीं कर रही, वो व्यक्ति सच्चे रूप में देखने की शक्ति है, ज्ञान चक्षु से वो देख रहा है, ज्ञानों की आंखों से देख रहा है। क्या देख रहा है, मैं रिपीट करूंगा, प्रकृति के द्वारा सारा कुछ क्रियान्वयन हो रहा है भगवान की अध्यक्षता में और आत्मा कुछ नहीं करता। एक बात तो ये क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से अपने को कर्ता के रूप में देखने की भावना से वो निर्लिप्त होता है, अलग होता है, मिथ्यांकार से मुक्त होता है। इसका अर्थ और भी है कि जीव अपने आप को महसूस करता है, समझता है कि उसका स्वभाव ज्ञानमय है और आनंदमय है। इस कारण से युद्ध करने के या यज्ञ करने के जो क्रियाएं हैं जिससे अंततोगत्वा दुख प्रस्तुत होता है, अर्थात भौतिक क्रिया करने से जो दुख प्रस्तुत होता है, वो जीव की क्रियाएं हो ही नहीं सकती, क्योंकि जीव स्वरूपगत रूप से आनंदमय है, चिन्मय है। तो यहां भी इस भाव को समझ करके भी व्यक्ति अपने आप को प्रकृति से अलग देख पाता है। लेकिन प्रकृति मेरे द्वारा भी अध्यक्षता होती है प्रकृति की, अर्थात अनादिकाल से मैं जीव अपनी विवेक खोया हुआ हूं, अपना विवेक खोया हुआ हूं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, और अनादिकाल से मेरे मन में चित्त में भोग के संस्कार हैं। दो चीजें, एक मैंने अपना विवेक खोया हुआ है कि मैं कृष्ण का दास हूं, और दूसरा अनादिकाल से मेरे हृदय में भोगों का संस्कार है। तो ये जो प्रकृति है वो सुख दुख और मोह के द्वारा, जिसका प्रकटीकरण भगवान कृष्ण के द्वारा किया जाता है, मेरी इच्छाओं के अनुसार मेरे भोग की व्यवस्था करती है और इंद्रियों और मन के द्वारा, शरीर और इंद्रियों के द्वारा कार्य को करती है। शायद समझ नहीं पाए होंगे आप, फिर से रिपीट करता हूं। जीव यह अनुभव करता है कि अनादिकाल से, जो ज्ञानमय जीव है, अनादिकाल से मेरे चित्त में भोग के संस्कार हैं, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, वो ये देखता है कि मैं भी प्रकृति को देख रहा हूं, मैं अपने शरीर को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम भी क्षेत्रज्ञ हैं तो हम भी सुपरिंटेंड कर रहे हैं, लेकिन परम कंट्रोलर नहीं है, परमेश्वर कृष्ण ही है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं जान रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कैसे बोल रहा हूं मैं नहीं जानता, मैं केवल इच्छा कर रहा हूं बोलने की। ठीक है, तो ये दो बात हमने समझी, यानी कि अनादिकाल से भोग के संस्कार मेरे चित्त में हैं और मैं भी इस शरीर की क्रियाओं से अवगत हूं। दो चीज को हम जीव देख रहा है, और क्या देख रहा है कि ये जो प्रकृति है ये है सुख दुख और मोह उत्पन्न कर रही है, और ये भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी इच्छा है भौतिक सुख दुख या मोह का टेस्ट करने की, और कब से है? अनादिकाल से। तो किस प्रकार से प्रकृति करता है? क्योंकि इन चीजों का संपादन मैं चिन्मय आत्मा नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली, तो प्रकृति मेरे शरीर और इंद्रियों को सप्लाई करती है। तो सप्लायर जो है, जो माध्यम, जो साधन है भोग करने का, इंद्रिय और जो शरीर है, वो प्रकृति देती है। तो उस दृष्टि से प्रकृति करता है और भगवान निर्लिप्त करता है, भगवान केवल उसको अरेंज करवा रहे हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना, भगवान की इच्छा के बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। और जीव भी करता है, क्योंकि जीव इच्छा करता है भोग करने की, इसीलिए प्रकृति के द्वारा भगवान व्यवस्था करते हैं भोग सप्लाई करने की। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो यानी कि प्रकृति करता है क्योंकि वो हमारा शरीर और इंद्रिय हमको देती है। तो प्रकृति साधन की तरह, जैसे हम चम्मच से कुछ खाते हैं तो चम्मच अपने आप तो हमें नहीं खिला देगा, हम अपने हाथ से चलाते हैं, इच्छा करते हैं। लेकिन अगर आप पूरा विश्लेषण करें कि मैं चम्मच का उपयोग कर रहा हूं तो हाथ चम्मच को पकड़ता है, कैसे पकड़ता है, क्या होता है, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं कैसे हो रहा है, वो सब भगवान की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, तो जो शुद्ध जीव है वह अकर्ता है, प्रकृति से अलग है, जो क्रियाओं को संपादित करती है। लेकिन भौतिक कार्यों में जीव अकर्ता है, लेकिन जीव अपने आप को कर्ता के रूप में भी देखता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि मेरी इच्छा के कारण प्रकृति क्रियान्वित हो रही है भगवान की अध्यक्षता में। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जीव अपने आप को अकर्ता के रूप में देखता है क्योंकि वो अपना स्वरूप देखता है प्रकृति से भिन्न है, कि इन क्रियाओं को करने की शक्ति मेरी नहीं है। लेकिन कर्ता के रूप में भी देखता है क्योंकि वो देखता है कि ये क्रियाएं प्रकृति के द्वारा कराई जा रही हैं भगवान के द्वारा, लेकिन उसको कराने के कारण है मेरी इच्छा, यानी ऑर्डर मैं दे रहा हूं और भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कर रही। जैसे होटल में जाकर के मैं ऑर्डर देता हूं तो मैं खाना नहीं बनाता, लेकिन जो होटल का मालिक है वो उसकी अध्यक्षता में जो कुक हैं वो कुकिंग कर करके हमारे सामने परोस रहे हैं। ये अच्छा उदाहरण है। तो आप ये देख रहे हो कि कुक आप नहीं हो, कुकिंग करना आपके आपके पास अधिकार नहीं है कि आप वहां पे जाकर कुकिंग करो, कुकिंग करने वाला कुक कोई और है जो वस्तुएं आपको पका पका कर आपके पास ला रहा है। लेकिन हम सीधे कुक को नहीं बोल सकते तो मेरे लिए खाना बनाओ। हम जो कह सकते हैं होटल में जाते, जो होटल का अध्यक्ष है या होटल का जो मालिक है उसकी अध्यक्षता में वो कुकिंग हो रही है कि ये व्यक्ति अगर ये इच्छा करता है तो ये बना बना करके इसको देना है। उसी प्रकार से और ध्यान देना चाहिए कि मालिक पूरी तरह से निर्लिप्त है कि हमें क्या खाना पसंद है। जो भी बहुत सारा मेन्यू है उस मेन्यू में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार से भौतिक इच्छाओं के बहुत सारे मेन्यूज हैं, मेन्यू मतलब बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, और हम इच्छा करते हैं ऐसे भोग करना, ऐसे भोग करना है। तो भगवान अपनी अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा विभिन्न प्रकार के भोग सामग्री और भोग करने की शक्ति हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तात्पर्य, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे इसके द्वारा नहीं किए जाते। तो एकदम स्पष्ट है, अभी हमने समझा दिया कि जो भौतिक कार्य दुख देने वाले होते हैं उसमें आत्मा का कोई मतलब ही नहीं, आत्मा कर ही नहीं सकता उस कार्य को। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य की को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, बहुत सीधा तात्पर्य आप देख रहे हैं, प्रभुपाद जी गीता भूषण से बिल्कुल सीधे ही प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या दुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है, जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। तो ये आप समझ लीजिए कि शारीरिक कार्यों से क्यों पृथक हो जाता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये कार्य जो है वो मेरे द्वारा नहीं हो रहे हैं, ये भौतिक प्रकृति के द्वारा कराए जा रहे हैं और मेरी इच्छा के द्वारा ये सब परोसा जा रहा है। तो अब वो व्यक्ति जो समझ लेता है कि भाई मेरी इच्छा की थी, मैंने इच्छा करी थी, इस कारण से मेरे सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो अब मैं अगर इच्छा करना बंद कर दूंगा तो मेरे मेरी टेबल पे अब ये वस्तुएं नहीं आएंगी जो मुझे दुख देने वाली हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक हरी चटनी ऑर्डर करते हैं जो बहुत तीखी है, तो आपने ऑर्डर किया ना, और जब खाएंगे और बुरा अनुभव हुआ तो आप दूसरे को जो कुक है उसको दोष नहीं दे सकते कि तुमने मेरे लिए इतना तीखा व्यंजन क्यों बनाया। तो इसलिए ऑर्डर हमने किया है, कुक तो अपना कर्तव्य कर रहा है, निर्लिप्त है, उसे कोई मतलब नहीं है वो क्या खाना है, कैसा लगेगा, कोई मतलब नहीं। तो प्रकृति पूरी तरह से निर्लिप्त है, लेकिन करने वाली प्रकृति है, भगवान की अध्यक्षता में, और इच्छा करने वाला मैं हूं। इसलिए मैं भले ही उन कार्यों को कर नहीं सकता, लेकिन इच्छा करने के कारण, मेरे ऑर्डर करने के कारण मैं भी करता हूं और मुझे उसका सुख और दुख भोगना पड़ता है। एक अच्छी बात प्रभुपाद जी और बता रहे हैं कि जब हम जिस शारीरिक रचना को प्राप्त होते हैं, फिर हम उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं, उस शरीर के अनुसार ही सुख दुख की कल्पना भी करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। जैसे अभी कोई मुझे मल खाने के लिए बोलेगा तो मुझे बहुत खराब लगेगा, ये क्या है, तो बहुत बड़ी यातना है मेरे लिए। लेकिन सूअर के शरीर में यही जीव जाकर के सोचेगा मल कितनी बढ़िया बात है, मल खाना कितनी अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि चेतना का विकास अगर हम नहीं करते हैं तो हमें जो शरीर प्राप्त होगा उसमें कार्य करने के लिए हम पूरी तरह से बाध्य हो जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति को भक्तों का संग करके अपनी चेतना का विकास करना चाहिए, और संग के द्वारा ही इच्छाओं का परिवर्तन होता है, और फिर भगवान की कृपा से हमको और अधिक मौका मिलता है भगवान की सेवा करने के लिए। यही जीव, यही भगवान और शक्ति देते हैं, जीव से बोलने के लिए, आंख से देखने के लिए, कान से सुनने के लिए, और भगवान व्यवस्था करते हैं ताकि उनकी सेवा करके मुक्त होकर के भगवान के धाम जा सके। तो बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए श्लोक को।